रेहान इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो जरूर जाएगा, उसने बुदबुदाया नूर के पास, जवाब लेने नहीं बल्कि उसे वापस लाने के लिए। कमरे में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान पल रहा था, क्योंकि अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, सच और बदले की लड़ाई शुरू होने वाली थी। नूर अपने पेरेंट्स के साथ अपने शहर पहुंच चुकी थी। ट्रेन से उतरते हुए उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो अपने स्टडी के लिए गई थी बहुत सारे सपनों के साथ, मगर आज वही नूर वापस आई थी रुसवा होकर। क्या सोच रही हो बेटा, उसके अब्बा ने बड़े प्यार से कहा और ट्रेन से उतरने में उसकी मदद की। अगर नूर को इतनी बदनामी मिली थी, इतनी रुसवाई झेलनी पड़ी थी, तो अल्लाह ने उसे एक ऐसा बाप दिया था जो हर हाल में उसके साथ खड़ा था। वो उसे गिरने नहीं देगा, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाएगा कि वो पूरी दुनिया का सामना कर सके। उसे अपनी बेटी बेहद अजीज थी और हर हाल में वो उसके साथ रहने वाला था। शाम को फरीद खान घर आ गया था, मगर रेहान उसके साथ नहीं आया था। जैसे ही वो कमरे में गया, रेहाना बेगम जो उस वक्त कमरे में थीं बोली, अच्छा रेहान भी आ गया क्या? ये कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगी, उसे अपने बेटे की फिक्र थी। नहीं, वो नहीं आया, फरीद खान ने कहा, डिप्रेस्ड है वो, खामोश हो गया है। फरीद खान ने अपने बेटे की फिक्र जाहिर की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फरीद खान ने गुस्से में कहा। मगर मैंने क्या किया, रेहाना बेगम हैरान होकर बोली। तुमने नूर को सिर पर चढ़ा रखा था, मेरी बेटी करती रहती थी, तुम्हें अपनी बहू से ज्यादा वो पसंद थी, देख लो क्या किया उसने। फरीद खान बेकार में ही रेहाना बेगम पर गुस्सा उतार रहा था, जाते जाते भी अपना रंग दिखाई ही गया। सादिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वो भी नूर की वजह से। नहीं नहीं, वो सो गई होगी, बाहर आ जाएगी, उसने लॉक नहीं किया, रेहाना बेगम बस बात खत्म करना चाहती थी, वो इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। कौन सी नींद है जो शौहर को इतनी तकलीफ में देखकर भी आ जाती है, फरीद खान गुस्से में था। उसे अपने शौहर की फिक्र करनी चाहिए जिस पर वो लड़की इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई है और उसे परवाह ही नहीं है। ये कहकर वो सादिया पर झल्लाता हुआ कमरे से निकलकर वॉशरूम में चला गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वही लड़की सच्चाई जानती है जो कोई और नहीं जानता। सादिया चुप थी, मगर उसकी ये खामोशी आगे चलकर उसके लिए भी बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। अगर वो सच बोल देती तो शायद हालात कुछ और होते, उसके भी और नूर के भी। रेहाना बेगम धीरे से सादिया के कमरे में आई, उसे उदास बैठे देखा तो उसके पास बैठ गई। तुम और रेहान कहीं बाहर चले जाओ, खाना खाने चले जाओ, मूड फ्रेश हो जाएगा तुम दोनों का, उसे फोन करो, कहो बाहर चलते हैं। सादिया ने हल्की सी नजर उठाई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, उसकी आवाज भर्रा गई। मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी रह गई थी ताई अम्मी, रेहाना बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम दोनों की मोहब्बत तो आज भी जिंदा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? इसी मोहब्बत की वजह से मेरा बेटा नूर में नहीं अटका, वरना उस लड़की ने तो पूरी कोशिश की थी। उनकी आवाज में जहर था, हमने उस पर एहसान किया और उसने हमें ही डस लिया। सादिया चुप रही, मगर उसके दिल में सवाल उठ रहा था, आखिर उसमें ऐसा क्या था कि हर कोई उसकी तरफ हो गया? उसमें मक्कारी थी, रेहाना बेगम ने ठंडे लहजे में कहा, इसीलिए हम उसकी बातों में आ गए, उसकी मासूमियत को सच समझ बैठे। वो एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, देखो ना, अरमान तक उसके झांसे में आ गया, उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, हर हाल में पूरे करना चाहती थी, और मैं बेवकूफों की तरह उसे बेटी बेटी कहती रही। उनकी आंखों में पछतावा था। मैंने ही रेहान से कहा था उसका ख्याल रखने को, मुझे क्या पता था वो इस काबिल ही नहीं है, सादिया ने धीरे से कहा। आप कहती या ना कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने नजरें झुका ली, क्योंकि रेहान का दिल तो पहले ही उस पर आ चुका था। ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो रेहान को बहुत अच्छे से जानती हो, उसे रिश्ते निभाना पसंद है, वो सबकी परवाह करता है, उसने नूर की भी परवाह की थी, अगर मैं नहीं कहती तो वो उस जैसी लड़की की थोड़ी भी परवाह नहीं करता, तुम कहीं हम पर शक तो नहीं कर रही? अरे हाँ ना, रेहाना बेगम ने बात संभालते हुए कहा। सादिया एक बात याद रखो, तुम्हारी परवरिश मैंने की है, मैंने तुम्हें हीरा बनाया है, हीरा, और तुम्हें सोने के तख्त में चढ़ा है, मेरा बेटा सोने का तख्त है। अगर तुम सही तरीके से बिहेव नहीं करोगी, अगर तुम गलतियां करोगी, तो मैं तुम्हें उसी तख्त से उतार दूंगी। रेहाना बेगम अपने बेटे की शान में कसीदे पढ़ रही थी। मेरा बेटा सूरज है, चमकता हुआ सूरज, इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम मेरे बेटे की बीवी हो। रेहाना बेगम की बात पर सादिया तन से मुस्कुराई। शायद माँ को तो अपनी औलाद ही सबसे बेहतरीन लगती है, उसने कुछ कहा नहीं, मगर मन ही मन सोचा, जिस दिन इस घमंड का सच सामने आएगा उस दिन क्या होगा, जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा सूरज नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे किसी लड़की की इज्जत की कोई परवाह नहीं। चलो उठो, ये रोना धोना बंद करो और तैयार हो जाओ, मैं रेहान को फोन करती हूँ, तुम दोनों डिनर पर चले जाना, रेहाना बेगम ने सादिया से कहा। जाओ कपड़े बदलो, क्या सूरत बना रखी है तुमने, अच्छे से रहा करो। सादिया का मन रोने का कर रहा था, मगर रेहाना बेगम के सामने उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। रेहाना बेगम उसके सिर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चली गई। उधर नूर अपने घर पहुंच चुकी थी, अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। उसके पास उसकी बचपन की सहेली रानी आई हुई थी, जो 10वीं के बाद पढ़ नहीं पाई थी, मगर नूर के साथ उसका रिश्ता हमेशा गहरा रहा। दोनों ने हमेशा अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर की थी। नूर की पूरी बात सुनकर रानी को सचमुच बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि नूर कितनी अच्छी लड़की है। तुम्हें उसकी नीयत पर पहले कभी शक नहीं हुआ, रानी ने पूरी बात सुनने के बाद नूर से पूछा। तुम किसकी नीयत की बात कर रही हो, नूर ने हैरानी से सवाल किया। वहां तो सभी अपने लगते थे, ऐसा लगता था जैसे सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, कौन जानता था कि किसके दिल में क्या है, नूर ने उदास होकर कहा। मुझे क्या पता था कि बड़े शहर के लोग साथ जीतने के लिए जहर क्या खा लेंगे। उसी वक्त उसकी अम्मी, जो कमरे में आ रही थी, दरवाजे के बाहर ही रुक गई और अपनी बेटी की बातें सुनने लगी। मुझे तो वो मोहब्बत लगी थी, ये नहीं लगा कि कोई जानबूझकर कर रहा है, मुझे लगा मेरी मोहब्बत में ही उसने जहर खा लिया, नूर ने जहर वाले कपकेक्स वाली बात नहीं बताई। माना अरमान ने तो शर्त लगाई थी, मगर रेहान को तो तुम भाई मानती थी, रानी ने कहा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई, हम लड़कियां तो राह चलते गैर मर्द की नजर तक पहचान लेती हैं कि सामने वाला कैसा है, फिर तुम्हें कैसे समझ नहीं आई कि रेहान तुम पर कैसी नजर रखता है, रानी ने सीधे उसके दिल की बात पूछी। तुम्हें कभी तो शक हुआ होगा इतना साथ रहते हुए कि वो कैसा इंसान है। एक पल के लिए नूर को याद आया कि एक बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, उसे लगा था कि रेहान ने उसके पैरों को अजीब तरीके से छुआ है, मगर उसने बहुत जल्दी उसे इग्नोर कर दिया था, शायद यहीं से इसकी बर्बादी की कहानी शुरू होती है। क्या सोच रही हो, रानी ने फिर पूछा। बस असल में शायद दिमाग ने मुझे समझाया था, मुझे लगा था, मगर मेरा दिल कहता था वो मुझे बहन कहता है, मेरी जिम्मेदारी ली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, नूर ने धीमी आवाज में कहा। उसे अपनी वाइफ से बेहद मोहब्बत है, सादिया भाभी बहुत सुंदर थी और ऊपर से उन दोनों में बहुत प्यार भी दिखता था, वो बहुत चालाक है, मैं उसे समझ ही नहीं पाई, नूर अपनी सहेली से अपने मन की बातें बता रही थी। उसकी अम्मी, जो अंदर आ रही थी, ये सब सुनकर वहीं दरवाजे के बाहर रुक गई और चुपचाप सुनने लगी। अब तक नूर से इकबाल ने एक भी सवाल नहीं किया था, क्योंकि उसकी अम्मी चाहती थी कि नूर से बात की जाए।